हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। साइड मिरर से इनायत अपने पूरे परिवार को देख रही थी, जो उसे हाथ हिलाते हुए बाय कह रहे थे। वहां तक तो इनायत ने अपने आंसुओं को जबरदस्ती रोक रखा और मुस्कुराते चेहरे के साथ सबको देखकर हाथ हिलाकर बाय कहने लगी। पर जैसे ही रियाज की गाड़ी हवेली के बाहर निकलती है, वैसे ही इनायत का चेहरा उदासी से भर जाता है और जिस आंसुओं को उसने रोका हुआ था वो बहने लगते हैं। इनायत और रियाज अपनी गाड़ी में थे और रियाज गाड़ी हेल मेंशन की तरफ ले जा रहा था, लेकिन उसके कानों में इनायत की सुबकने की आवाज आ रही थी। उसने तिरछी नजरों से इनायत को देखा, जो अपने दुपट्टे से अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रियाज ने सख्ती से इनायत से पूछा। तो इनायत हैरानी से रियाज को देखने लगती है। आखिर वो रोए क्यों ना, अपने परिवार से मिलकर वो कितनी खुश थी, लेकिन उसे फिर से एक बार उनसे बिछड़ना पड़ रहा है। ऐसे हालात में क्या वो रो भी नहीं सकती है? उसने सुबकते हुए रियाज की तरफ देखा और उसे कहने लगी, ऐसा और कब तक चलेगा? मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन ये सब बर्दाश्त करना मेरे लिए भारी होता जा रहा है। मुझे अपने परिवार के पास रहना है, अपने अम्मी के पास रहना है, मुझे उन लोगों के साथ रहना है। मुझे उनके साथ सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, उनके साथ रहकर मैं सारी तकलीफों से निकल जाऊंगी। लेकिन आप मुझे वापस ले जा रहे हैं। मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे वापस हवेली जाना है। क्या आप मुझे वापस हवेली छोड़ सकते हैं? इनायत ने रोते हुए रियाज से कहा। रियाज ने उसकी सारी बात सुनी, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे और वो बस चुपचाप ड्राइव कर रहा था। जैसे ही हेल मेंशन आता है, रियाज अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए इनायत को देखने लगता है। तो इनायत रोते रोते खिड़की के शीशे पर टिककर सो गई थी। उसका सर सीट से टिका हुआ था और चेहरा खिड़की की तरफ था। उसे ऐसा सोया देखकर रियाज के दिल में एक सुकून भरा जाता है। वो धीरे से अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलता है और बहुत आहिस्ते से दरवाजे को बंद करता है, जिससे इनायत की नींद में डिस्टर्ब ना हो। वो दूसरी तरफ से जाकर इनायत की तरफ दरवाज़ा खोलता है। वो झुककर इनायत के मासूम से चेहरे को देखता है। रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी और आंसुओं के निशान उसके गाल पर आ गए थे। भले ही आंसुओं के दाग सूख गए हों, लेकिन फिर भी रियाज ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके आंसुओं को साफ किया, जो पलकों को भिगोई जा रहे थे। उसने धीरे से आगे बढ़कर इनायत के माथे को चूम लिया। अचानक से इनायत के चेहरे पर जो बेचैनी थी, वो सुकून में बदल जाती है और वो एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ा सा कसमसाती है और फिर सो जाती है। उसके ऐसा करने पर रियाज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से इनायत के हाथों को देखा, जिस पर पुराने जख्मों के निशान थे और काले पड़ गए थे। रियाज ने धीरे से उसकी उंगलियों को छूते हुए उसको देखकर कहने लगा, फिक्र मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रियाज को खुद नहीं पता था कि उसने आखिरकार इनायत से ऐसा कहा क्यों। उसने धीरे से इनायत की सीट बेल्ट को खोला, जिससे इनायत का सर लुढ़कने को हो गया था, पर रियाज ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके सर को अपने कंधे पर थाम लिया। उसने दुल्हन की तरह इनायत को अपने गोद में उठा लिया और उसे लेकर मेंशन के अंदर आ गया। रियाज ने इनायत को आराम से बिस्तर पर लेटाया और उसे चादर से ढक दिया। उसने कमरे की लाइट ऑफ की और हल्का सा दरवाज़ा खोला छोड़कर वो अपने कमरे में चला गया। उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। कमरे में पहुंचकर उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसकी बेचैनी फिर भी कम नहीं हो रही थी। शावर का पानी उसके जलते हुए मन को कम नहीं कर पा रहा था। उसे इनायत की बातें चुभ रही थी। उसका रवैया बर्दाश्त करने लायक नहीं था। उसके आंसू खंजर का काम कर रहे थे, पर जितना दर्द, जितनी तकलीफें वो इनायत को दे रहा था, अंदर ही अंदर वो खुद में भी महसूस कर रहा था। उसे इन सबको खत्म करना था और उसने सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ नूर मेंशन में अमल और करण एक पिलर के पास कोने में खड़े थे और करण ने अमल को घेर रखा था। अमल गुस्से में उससे कहती है, हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। मैं तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि तुमने मेरे दोनों नंबर ब्लॉक क्यों कर दिए हैं। करण ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। तो अमल उसे देखते हुए कहती है, क्योंकि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। जब मैं कहती हूँ कि मुझे फ़ोन मत करो, तो क्यों मुझे बार बार फ़ोन करते हो? करण अमल का हाथ पकड़ता है और मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा देता है। वो अपने दांत पीसते हुए अमल की आंखों में देखकर उसे कहने लगा, मैं इसलिए तुम्हें फोन करता हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं रह सकता हूँ तुम्हारी आवाज़ सुने बिना। बेचैनी होने लगती है। ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे लिए किसी नशे की तरह हो। जब तक तुम्हें देख नहीं लेता हूँ, तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन लेता हूँ, तुमसे बात नहीं कर लेता हूँ, तब तक ये बेचैनी खत्म नहीं होती है। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है? और किस बात से डरती हो तुम? मुझे समझ में ही नहीं आता है कि क्या कमी है मुझ में जो तुम मेरा प्यार कबूल नहीं कर रही हो। अगर तुम्हें इस बात का डर है कि रियाज नाराज होगा, तो मैं जानता हूँ रियाज को, वो नाराज नहीं होगा। वो मेरे बचपन का दोस्त है। उसके बुरे वक्त में मैंने उसे संभाला था, उसके अच्छे वक्त में मैंने उसके साथ खुशियाँ मनाई थी। ऐसे में तुम्हें लगता है कि उसे हमारे बारे में पता चल जाएगा तो वो मुझसे नाराज होगा? मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारे परिवार से बात कर लूँगा, सबको मना लूँगा। अगर सब ने मना कर दिया तो मैं वादा करता हूँ चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊँगा। लेकिन तुमने तो कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया है। पहले ही अपना फैसला सुना दिया है कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। और मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम बचपन से मुझे पसंद करती आई हो, लेकिन कभी सामने से कबूल नहीं करती हो। और अब जब मैं कह रहा हूँ तो तुम इनकार कर रही हो। मुझे बताओ अमल, इनकार की वजह क्या है?